نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ طہٰ جو مکی سورت ہے اس کا آغاز کریں گے. سورہ طہٰ کے جو زمانہ نزول بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تقریباً 6 نبوی تھی، 5 یا 6، یعنی مڈ کا جو ٹائم تھا مکی دور کا، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی. اور اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو مسلمانوں کے اوپر مشکلات چل رہی تھیں، جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، جیسے ان کے اوپر سخت حالات تھے، تو اس کی ایک ریفلیکشن ہمیں ملتی ہے اس سورت میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان حالات میں ان مومنوں کو تسلی دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی جاتی ہے. یہ سورت تقریباً اس وقت جس وقت مسلمان پہلی ہجرت حبشہ کر رہے تھے اس وقت نازل ہوئی. اور اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی مشکل حالات ہی ہوں گے جو یہ ضرورت ہوئی کہ لوگ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں کسی دوسری جگہ موو ہونا کوئی نارم نہیں تھا جیسے آج ہے. جیسے آج ہم لوگ اٹھتے ہیں اپنے ملکوں سے کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، وہیں جا کے بس جاتے ہیں، ایسا اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں لوگ جہاں رہتے تھے وہیں ان کی نسلیں پیدا ہوتی تھیں اور وہیں مر کھپ جاتے تھے، لیکن کہیں جاتے نہیں تھے. قبائلی زندگی تھی، اپنے قبائل میں ہی رہنے کو پریفر کرتے تھے. لیکن جس وقت اس قدر سویر پنشمنٹس دی جانے لگی مسلمانوں کو، کہ جن کو آپ اگر پڑھتے بھی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کیسے وہ لوگ ان چیزوں کو برداشت کرتے تھے. اتنا ٹارچر، اس قدر اذیت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کہیں کوئی عدالت نہیں تھی، کہیں کوئی پولیس نہیں تھی، کہیں کوئی ہیومن رائٹس نہیں تھے، کہیں کوئی میڈیا نہیں تھا جو کہ یہ خبریں دیتا. ایسے حالات میں ایک چیز تھی جو صرف تسلی دیتی تھی، ایک چیز تھی جو دل کو باندھتی تھی، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ کی وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی وہ حالات، ظاہر ہے انسان تھے تو وہ حالات بڑے گراں گزرتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے. دن بھر تبلیغ کرتے تھے، راتوں کو بے چین ہو کے دعائیں کرتے تھے، اور آئے دن ظاہر ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں، فلاں کو شہید کر دیا گیا، فلاں کو کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، فلاں کو گھسیٹا گیا، فلاں کے اوپر یہ ٹارچر ہو گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے حالات کے اندر انسان پہ کیا گزرتی. آج ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر آج ہی کوئی خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ جی کسی جگہ پہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں اسلامو فوبیا ایسا پھیل گیا ہے، فلانی جگہ پہ حجاب کھینچ لیے، فلانی جگہ پہ کسی کی گاڑی کو آگ لگا دی، فلان جگہ کے اوپر لوگوں کو مارا پیٹا گیا، لوگ کیسے ڈر جاتے ہیں، اپنا دین ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اندازہ کیجیے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان تھے، اور کیسے وہ لوگ جمے رہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا تھا نا وہ اس سے ہٹتا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اس کی وجہ سے، مگر وہ ہٹتے نہیں تھے. تو اس سورت کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے. اور اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے 1 سے 8 تک آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے نبی کو، اور اس کے بعد بے شمار آیات موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کلیم بھی بتایا گیا. سورہ کلیم اس لیے کیونکہ اس میں کلیم اللہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، लिहाजा आप देखेंगे आयत नंबर 9 से तकरीबन 98 तक आप ये सारी आयात देखेंगे जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की वाकये को हाईलाइट किया गया है। और 135 आयात हैं, तो 99 से 135 तक यानी एंड तक आखरत के बारे में, नमाज के बारे में, सबर, जकात, ये सब चीजें, और मुसलमानों को तसल्ली और ईमान वालों के लिए जो अल्लाह ताला की मोहब्बत है उसको बताया गया। तो इस तरह से हम तीन पार्ट्स में इस सूरत को डिवाइड कर सकते हैं। कहा जाता है कि सूरह मरियम के बाद ही ये सूरह तौहा नाजिल हुई थी, और आप देखेंगे कि मजामीन में भी मुनासिबत आपको नजर आएगी। ये सूरत का नंबर बताया जाता है, तरतीब नजूली के एतबार से 54 नंबर की सूरत है, और यही वो सूरत है जो हजरत उमर के कबूले इस्लाम का एक जरिया बनी थी। इमाम इब्ने इसहाक लिखते हैं कि मुझ तक जो खबर पहुंची है इसके मुताबिक हजरत उमर के इस्लाम लाने का वाकया इस तरह से है कि उमर की बहन फातिमा बिनते खत्ताब और उनके बहनोई सईद बिन जैद के उनके निकाह में थी, वो इस्लाम ला चुकी थी और इनके शौहर भी इस्लाम ला चुके थे, और वो दोनों अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे, और बनू आदि के एक और शख्स नुआइन बिन अब्दुल्ला भी मुसलमान हो चुके थे, और वो भी अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपा के रखे हुए थे। तो हजरत खब्बाब बिन अरत जो थे वो कुरान मजीद पढ़ाने के लिए हजरत फातिमा के घर जाया करते थे। एक दिन हजरत उमर जो है तलवार लिए जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को कत्ल करने का इरादा घर से लेके निकले थे कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा, खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। तो हजरत उमर को ये बताया गया कि वो सब सफा पहाड़ी के पास एक घर में है, और उस वक्त मुसलमानों की तादाद, मर्दों की तादाद 40 के करीब थी, कहते हैं 39 थी, लेकिन मोर और लेस इतनी थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके चचा हजरत हमजा भी थे, अबू बकर सिद्दीक, अली और दीगर मुसलमान थे। अब जब हजरत उमर जा रहे थे तो नाइम बिन अब्दुल्ला रास्ते में मिले और पूछा है उमर तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद का कत्ल करने का इरादा रखता हूँ जो दीन बदलने वाले हैं, जिन्होंने कुरैश में फूट डाल दी और इनके नौजवान और कम अक्ल लड़कों को बहकाया है और हमारे दीन की मजम्मत की है और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है, सो मैं उनको कत्ल करूंगा। तो नाइम ने कहा है उमर तुम धोखे में मुब्तला हो, क्या तुम समझते हो बनू अब्दे मनाफ तुमको जमीन पे चलने के लिए छोड़ देंगे इसके बाद कि तुम उनको कत्ल करके आ जाओ, तो तुम पहले अपने घर की क्यों नहीं खबर लेते। हमने कहा मेरे घर को क्या हुआ है, नाइम ने कहा तुम्हारे बहनोई और तुम्हारे चचाजाद सईद बिन जैद जो बहनोई भी हैं और चचाजाद भी कजन भी लगते थे और तुम्हारी बहन जो है दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तो पहले उनसे तो जाके निपटो। उमर अपनी बहन और बहनोई का कसद करके वापस हुए, उस वक्त उनके पास खब्बाब बिन अरद थे और उनके पास एक सहीफा था जिसमें लिखा था तौहा और ये आयात, तो वो उनको यही पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने हजरत उमर की आहट सुनी तो हजरत खब्बाब तो अंदर जाके छुप गए और फातिमा बिनते खत्ताब ने वो सहीफा भी छुपा दिया। अब हजरत उमर ने थोड़ी कुरान की आवाज सुन ली थी, जब घर में दाखिल हुए पूछा ये कैसी आवाज है, उन दोनों ने कहा हम तो कोई का आवाज नहीं सुनी हमने। तो उमर ने कहा कि क्यों नहीं, खुदा की कसम मुझे इत्तला मिल चुकी है कि तुम दोनों मोहम्मद की दीन की पैरवी कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने अपने बहनोई की एक थप्पड़ मारा, इतनी पिटाई की, और उसके बाद उनकी बहन अपने शोहर को बचाने के लिए खड़ी हुई तो उनको भी मारा, उनका सर फट गया, चेहरे से खून बहना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद बहन ने कहा कि हाँ हम मुसलमान हो चुके हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, अब तुमने जो करना है करो। तो जब अपनी बहन का खून बहते हुए देखा तो फिर दिल नरम हो गया और बड़ी नदामत हुई कि मैंने क्यों इसको मार दिया। तो फिर रुक गए और फिर पूछा अपनी बहन से कि अच्छा मुझे दिखाओ तो सही कि तुम क्या पढ़ क्या रहे थे, मैं भी देखूँ ना वो क्या पैगाम लेकर आए, और पढ़े लिखे आदमी थे। तो इनकी बहन ने कहा कि मुझे लगता है कि आप उसकी मतलब कुछ उसको तौहीन उसकी कर देंगे उस सहीफे की, तो फरमाया मुझसे ना डरो, अपनी बुतों की कसम खा के कहा कि मैं वो वैसे ही तुम्हें वापस कर दूंगा जैसे मैं तुमसे लूंगा। इदारे कुतनी में ये रिवायत है। अब जिस वक्त उन्होंने ये कहा तो बहन को उम्मीद हुई कि शायद वो इस्लाम ले आए, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप नापाक हैं, मुशरिक हैं, और कुरान मजीद को पाक शख्स के सिवा कोई नहीं छू सकता, तो आप गुसल करें। तो उन्होंने गुसल किया और बहन ने फिर उनको सहीफा दिया जिसमें लिखा था तौहा। जब उन्होंने ये इब्तदाई आयात पढ़ी ना, तो फिर कहते हैं ये कितना हसीन कलाम है, कितना आजीम कलाम है। जब हजरत खब्बाब ने हजरत उमर का ये कॉल सुना, बात सुनी, तो जहां पे छुपे हुए थे वहां से बाहर आ गए। उन्होंने कहा है, उमर अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ तुम्हारे हक में खास तौर पे कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था कि वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस्लाम के अबुल हकम बिन हशाम से तायीद फरमा या उमर बिन खत्ताब से। अबुल हकम उनकी उसकी कुनियत थी अबू जहल की। तो उस वक्त हजरत उमर ने कहा कि खब्बाब मुझे ले चलो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकि मैं इस्लाम ले आऊं। तो वो उनको लेकर गए थे और वहां पर ये इस्लाम ले आए थे। तो ये हमें रिवायत मिलती है, और ये भी पता चलता है कि ये आयत नंबर जो 14 है ना, इसके ऊपर आके उन्होंने फरमाया कि ये जिसका भी कलाम है तो वाकई उसके सिवा कोई इस लायक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, ये जिसका भी कलाम है। यानी इतने ज्यादा उनके दिल पर ये आयात असर की थी कि फौरन यानी उसके बाद इस्लाम लाने के ऊपर आमादा हो गए, दिल पिघल गया। तो हमें ये सोचना चाहिए जब हम ऐसी आयात पढ़ें, तो हमेशा ये जहन में लाना चाहिए कि क्या बात है इन आयात के अंदर, क्या हमारे भी दिल पिघलते हैं इन आयात के साथ, क्या हमारे दिलों पर भी ये आयात ऐसे असर करती हैं। ठीक है। दूसरी एक बात बहुत अहम है कि इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम का इतना ज्यादा जिक्र लंबा, जो मैंने आपको बताया तकरीबन यानी 90 आयात तकरीबन उनके ऊपर है, तो क्या वजह है कि उनका जिक्र इतना ज्यादा है। असल में मूसा अलैहिस्सलाम भी एक बहुत जालिम जाबिर बादशाह के सामने खड़े हुए थे और उसका मुकाबला किया था, और उसका सामना करना फिरौन का ना, और उसके आगे कलमा हक कहना, अपनी मौत को दावत देना था। वो इतना जालिम था, आप इससे अंदाजा कीजिए ना, कि जिसको छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी तरस ना आए, जिसको मासूम जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके ऊपर भी तरस ना आए, तो मुझे बताएं कि फिर ऐसा इंसान क्या इंसान होगा। तो ऐसे आदमी के आगे कलमा हक बोलना बहुत बड़ी बात थी, और उस वक्त के अंदर जब बनी इसराइल तो बिल्कुल ही पिसे हुए थे, वो तो कुछ आवाज ही नहीं उठा सकते थे, अब उनके उनकी सपोर्ट तो समझ लें कोई मतलब नहीं थी, कुछ भी उनकी ऐसी नहीं थी कि कोई बैकिंग हो, कोई सपोर्ट हो, कोई इस तरह की चीज हो। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ही खड़े हैं, और कैसे इतना जालिम बादशाह और सब उसके साइड पे हैं, तो उसमें उन्होंने कैसे मुकाबला किया। ये एक तरह से एक तसल्ली भी थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो भी तो पिस रहे थे ना, तो उनको बताया गया कि कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको सोचें इस चीज को, कि हालात जब दीन की वजह से बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना, तो बास दफा लोगों के दिल में ख्याल आने लगता है कि पता नहीं हम हक पे भी हैं या नहीं। अगर हम वाकई हक पे हैं तो फिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, फिर अगर हम सही हैं तो हमारे साथ तो अल्लाह की मदद होनी चाहिए, इनका खात्मा हो जाना चाहिए, तबाह हो जाने चाहिए, और हमें तो स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम तो पिसने लगे हुए, तो पता नहीं हम सही भी हैं या नहीं। तो उनको बताया गया कि नहीं, आपसे पहले भी कोई ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल हालात सहे हैं, बहुत मुश्किल हालात, ये नई बात नहीं है, बल्कि इंसान को तो इस चीज के ऊपर थोड़ा परेशान हो जाना चाहिए कि अगर वो हक पर है और उसकी कोई मुखालफत ही नहीं, वो हक की दावत देने वाला है, वो हक बात करने वाला है, और कोई भी कुछ नहीं कहता, लोग उसको हार पहना रहे हैं, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसलिए कि ऐसा नहीं होता, तमाम पैगंबरों की मुखालफत हुई है। तो उस वक्त में बनी इसराइल ने भी जुल्मो सितम सहा, वो तो उस वक्त की मुवाहिद कौम थी, तौहीद वाले थे, उन्होंने भी जुल्म सहे थे। तो अगर मुसलमानों के ऊपर मक्का के अंदर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो पहले भी लोगों ने जुल्म सहे, और इस सूरत में भी जैसे आप सूरह मरियम में देखते थे ना अल्लाह ताला का नाम और रहमान बार बार आया, तो इसी तरह इस सूरत में भी आप देखेंगे। और ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत और शफकत ही है कि वो ऐसा कुरान नाजिल करे कि जो दिलों को तसल्ली दे दे, तशफी दे दे। और ये पता चलता है मुश्किलात आएंगी इस रास्ते में, ये रास्ता आसान नहीं है जो दीन का रास्ता है। हम तो अपने ऊपर देखें तो हमें तो जरा सा कांटा भी चुभ जाता है ना तो हमारी चीखें निकलने लगती हैं। अल्लाह रहम कर दे और हमें माफ कर दे और अल्लाह हमें कभी ना आजमाइश में डालना, लेकिन हम तो कोई तरह की भी आजमाइश सहने के काबिल नहीं कि हम दीन के पर जरा सी दीन की वजह से किसी की जॉब ही चली जाती है, या किसी को जरा सा भी कोई ताना दे देता है, या कोई किसी से जरा भी बातचीत बंद कर देता है, या उसके साथ दोस्ती खत्म कर देता है, तो हमारे ऊपर तो कोई पहाड़ बन के गिर जाता है और हम फौरन दीन को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुछ अंदाजा करते हैं आप इन लोगों को, इन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये मुश्किलात आएंगी इस रास्ते में, मगर इनको कभी अजाब ना समझना, इनको कभी बदबख्ती ना समझना कि हाय मेरे ऊपर मुसीबत आए, ये इस दीन की वजह से मैं ऐसी वो हो गई। नहीं, ये तो सरासर रहमत है। ठीक है, तो पूरी सूरत में आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बात की है, लेकिन काफरों के साथ डायरेक्टली बात नहीं की, क्योंकि जिससे इंसान नाराज होता है, देखिए उससे भी आप सामने बात नहीं करना चाहते। आप घर में कभी लड़ाई हो तो बच्चों को कहते हैं कि बाप को बता दो ये चीज, चाहे वो सामने ही बैठा हो, लेकिन इंसान नहीं बात करना चाहता। तो अल्लाह ताला की इतनी नाराजगी काफरों से है कि उनके साथ डायरेक्टली बात नहीं की अल्लाह ताला ने, और ये अल्लाह ताला का गुस्सा उनके ऊपर जाहिर होता है इससे। तो देखते हैं आज सूरह ताहा आयत नंबर 1 से 41 तक। तौहा, तौहा ये हरूफ मुकत्तआत हैं, और इससे पहले भी हम हरूफ मुकत्तआत वाली सूरतें देख चुकी हैं। मैंने जैसे आपको बताया था 28 जगहों पर कुरान पाक में सूरतें स्टार्ट होती हैं हरूफ मुकत्तआत से, और अक्सर जगहों पर आप देखेंगे कि उसके बाद कुरान करीम का जिक्र आता है। तो ये हरूफ मुकत्तआत क्या है? बाज ने इसका तर्जुमा ये किया कि तौहा अल्लाह ताला का नाम है, बाज ने कहा कि इसका मतलब होता है या हबीबी, है मेरे महबूब। तो वल्लाहु आलम, बाज कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम है। तो लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी रिवायत नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि हम हतमी तौर पे कह सकें कि हाँ यही मतलब है। हम ये नहीं जान सकते, ये सारी राय हैं मुफस्सिरीन की कि ये भी मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई हतमी राय, ये एक आदमी भी इसका मतलब लिया गया। तो इसके बारे में हमेशा याद रखें, जो जो मुफस्सिरीन और सहाबा और ताबईन कहते थे ना, वही हम भी कहेंगे, और वो ये कि वल्लाहु आलमु बि मुरादिही, अल्लाह ताला ज्यादा जानता है इसकी मुराद को। ठीक है, तो ये याद रखें कि जब भी हरूफ मुकत्तआत आप देखेंगे इस तरह के ब्रोकन लेटर्स, तो आपने यही कहना, अल्लाह ताला के अलावा इसकी मुराद को कोई नहीं जान सकता, हमें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तो फिर सवाल यह कि फिर कुरान में ऐसी बातें क्यों आई? कुरान तो सारा इसके लिए है कि हमें समझ आए और हमारी रहनुमाई के लिए है, तो फिर कुरान में ऐसी बात क्यों आई जिसका माना ही हमें पता नहीं? तो बात यह है कि हमें माना नहीं पता, मगर ये मतलब नहीं कि इसका कोई माना ही नहीं है, क्योंकि बाज लोग ये भी कह देते हैं इसका कोई माना ही नहीं है, तो फिर बेमानी चीजें हैं कुरान पाक में। अस्तग़फिरुल्लाह, कुरान में कोई बात बेमानी नहीं है, तो माना तो है मगर हमें नहीं पता। अच्छा, फिर वही वाली सवाल आ गया ना कि फिर या कुरान में ऐसी बात क्यों आई है कि जो हमें पता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर डालने की जरूरत क्या थी? इसका भी आपको जवाब मालूम होना चाहिए। ये जो हमें नहीं पता और जिस सूरत से पहले भी ये ऐसे हरूफ आते हैं, तो वो हमें कुछ समझाने के लिए आते हैं। क्या समझते हैं आप? इतनी दफा आपने तो ऐसी सूरतें देख ली हैं, तो अब आप बताइए ना कि क्या आपको क्या समझ आती है इस बात से कि हमें इसका माना नहीं पता, ये हर दफा मैं आपको बता देती हूँ, तो फिर क्यों आया कुरान पाक में? असल में एक बात बहुत अच्छी तरह ताकि हमें समझ आ जाए। आप देखिए सूरह बकरा भी स्टार्ट होती है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईब फ़ीह। तो क्या समझाना है हमें कि तुम जितना भी इल्म हासिल कर लो, जितने भी ऊपर चले जाओ, मगर आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो तुम नहीं जानते होगे, तुम्हें नहीं इल्म होगा। ठीक है, तो ये एक इल्म वाले का इम्तिहान होता है कि वो आगे से कह दे कि मैं नहीं जानता। जैसे इमाम मालिक के पास एक ग्रोह आया था ना, उन्होंने सवाल किए थे उनसे, 40 सवाल किए। इमाम मालिक हर सवाल पे कह रहे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे लादरी लादरी लादरी। वो कहते हैं हम जाके अपनी कौम को क्या बताएंगे कि इमाम मालिक इतना बड़ा इमाम और वो कह रहा है मुझे नहीं पता। तो कहते हैं हाँ उसको कह देना कि मालिक को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला हमें घुटने टेकने पे ला देता है, मजबूर कर देता है कि हम कहें कि हमें नहीं पता। तो इस माइंडसेट के साथ कुरान के आगे बैठो कि मुझे नहीं पता, इसके साथ मत बैठो कि मुझे सब कुछ पता है। बात समझ आई? अगर कोई कुरान पाक के सामने ये सोच के बैठता ना, मुझे तो चीज सब आता है, मैं वैसे ही आ गई हूँ। जैसे हमारी माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि हमें तो पहले ही बहुत आता है, हमने तो इतने कोर्स किए हैं, तो हम तो वैसे ही आ गए मैं इस क्लास में। चलो हमने कहा आपको कुछ नहीं यहाँ से नफा हासिल होना, फिर क्योंकि इंसान को नफा वहीं से हासिल होता है जब वो ये कह देता है मुझे नहीं आता, जब वो तालिबे इल्म बन के आता, इल्म का तलब करने वाला। और अगर आप सोचते हैं मेरा बर्तन पहले ही इतना भरा हुआ है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही आ गई, चलो देखती हूँ, तो फिर क्या लेंगे यहाँ से। दूसरे ये भी बात है कि इसमें अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करने के लिए ये ऐसे लेटर्स आते हैं। यानी अगर सोचे ना, कोई अपने ख्यालों में गुम बैठा हुआ है, तो कोई भी बात किए जाए तो उसको कुछ नहीं, अपनी कहीं और ही पहुंचा हुआ है, तो एकदम कोई कहे तोहा, तो आप चौंक जाते हैं कि क्या बात हो गई ना, तो मुतवज्जे होते हैं ना। तो इसलिए यह हरूफ मुकत्तआत अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हैं। मा अनजलना अलैकल कुरआन लितश्का, नहीं नाजिल किया हमने आप पर ये कुरान कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। कुरान पाक को नाजिल करने का पर्पज ये नहीं है, ये मकसद नहीं है। देखें अनजल इंजाल जो होता है ना, वो एक इंजाल है, आगे नजल है, इंजाल होता है एक ही दफा में नाजिल करना, और दूसरा ये लाजिम भी है, नजला मुतादी है, सॉरी नजला लाजिम है और ये मुतादी है, यानी है किसी ने नाजिल किया। तो कुराने पाक का जो नजूल है वो इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए, आपकी जिंदगी हार्ड हो जाए। कि ये सुभान अल्लाह, ये तो सरासर रहमत है, ये जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए नहीं है। और अक्सर हमारे लोग कुराने पाक की तरफ क्यों नहीं आते, इसलिए कि वो कहते हैं हम आ जाएंगे ना, पता नहीं कुरान ने हमें क्या कर देना है, या क्या कितनी मुश्किल हमारी जिंदगी बन जाएगी, हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। वल्लाहु आलम, उनके जहन में एक चीज होती है कि पता नहीं कुरान पढ़ने लग गए ना हम इतने, पता नहीं ऐसे हो जाएंगे हमारे सारे काम रुक जाएंगे, हमारी जिंदगी आगे नहीं चलेगी, हमारा ये काम कैसे होगा, हमारा हर काम उनको याद आ जाता है, बच्चों को कैसे देखेंगे, घर को कैसे देखेंगे, मेरे तो और भी बहुत सारे काम होते हैं वो मैं कैसे करूंगी। तो ये कुरान आपके ऊपर मुशक्कत डालने के लिए तो नहीं आया, आपकी जिंदगी को हार्ड करने के लिए तो नहीं आया। ऐसे ऐसे बचते हैं जैसे कि पता नहीं क्या, यानी इंसानों ने इसको क्या समझा हुआ, मुशक्कत की चीज, तकलीफ की चीज, ये तकलीफ तो नहीं है, ये क्या है, इल्ला तस्बीरतन लिमन यख्शा, ये तो एक नसीहत है मगर उसके लिए जो डरता है। देखिए हम यही बात है कि इंसान जो है कुराने पाक की तरफ जब आने लगता है ना, शैतान उसको ऐसा बहकाता है कि तुम्हारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, हाँ ये तो बड़ा वो ऐसे है, तुम कैसे करोगी, तुम्हारे पास तो काम ही इतने हैं। उस वक्त उसको सारे दुनिया के काम भी याद आने लगते, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मुश्किल नहीं बनाया और मुशक्कत नहीं बनाया। जैसे इंसान सोचे कि जिसको के जैसे मैंने आपको बताया तशका का मतलब बदबख्ती भी है, तकलीफ भी है, मुसीबत नहीं बनाया इसको, इसको मुसीबत ना समझे, ठीक है। कुरान का मतलब क्या है? औरा से पढ़ना, और कुरान है, और आ होता है ना पढ़ना, कुरान जैसे रहमान, ठीक है। रहमान में क्या, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, एग्जेजुरेशन है ना, और बार बार रहम करने वाला, मुसलसल का माना भी है। तो कुरान जो बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला, बार बार पढ़ा जाने वाला, मुसलसल पढ़ा जाने वाला, तो एक तो ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको पढ़े और एक बंदे के ऊपर लिखे तो बार बार इंसान उसको पढ़े, जिसको वो कलाम है ये। तो क्या वाकई हमारी जिंदगी में ऐसा ही है कि बार बार हम इसको पढ़ते जाते हैं, बार बार पढ़ते जाते हैं? नमाज की बात नहीं कर रही, नमाज में तो सारे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या हम कुरान, कुरान का जो वर्ड ही आता है ना, वो ही आपको बताता है कि ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि मैंने इसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसका वर्ड ही, इसका नाम ही ऐसा है कि बार बार पढ़ी जाने वाली। तो वाकई मैं बार बार पढ़ती हूँ। और कुरान के बारे में बाज ने इसको कौफ रा हमजा से किया और बाज ने कौफ रा नून से इसका रूट वर्ड बताया। तो कुरान जैसे करीन होता है साथी, उससे है, करना का मतलब होता है जोड़ना, तो करीन साथी, यानी ये करीन है, ये साथी है, ये नहीं कि फिजिकली सिर्फ साथी है कि चलो मैंने कुरान पाक अपने पर्स में भी रखा हुआ है और मेरे घर में भी जगह जगह पड़ा हुआ है तो बस मेरा साथी हो गया। नहीं, साथी वो होता है जिसके साथ इंसान बहुत ज्यादा टाइम गुजारता है, फिर ही आप उसको साथी कहते हैं ना। तो ठीक है, आपके पास फोन में है, ऐप है, और फोन आपके पास हर वक्त रहता है, तो इसलिए मेरे मेरा साथी हो गया, ये नहीं। सब वक्त गुजारे, कितनी दफा आप उस ऐप को खोलते हैं, कितना उसके साथ वक्त गुजरता है, क्योंकि साथी तो वो होता है कि जरा सी भी देर उससे बात ना हो तो आप फौरन उसको कॉल करते हैं, फौरन उसी तरफ उसका हाल अहवाल पूछते हैं, वही साथी होता है। साथी ये तो नहीं होता कि आपको कई कई दिन उसकी खबर ही नहीं, वो है जिसके साथ ज्यादा वक्त गुजरे। कितना वक्त गुजरता है कुरान के साथ, कि कभी मैं इसका नाजरा पढ़ रही हूँ, कभी तर्जुमा याद कर रही हूँ, कभी मैं इसको हिफ्ज कर रही हूँ, कभी मैं इसकी आयतों को समझने के लिए इसकी तफसीर पढ़ रही हूँ, यानी ये मेरा ताल्लुक मुसलसल इसके साथ, कि ये मेरा साथी कहलाए। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि मेरा साथी कुरान है? नहीं, ऑनेस्टली बताएं, मेरा इतना वक्त इसके साथ गुजरता है कि मैं इसको आप करीन कह सकती हूँ कि मेरा करीन है, मेरा साथी है, ऑनेस्टली, जिसको थोड़ी देर को भी मैं इससे दूर हो जाऊं तो मैं बेचैन हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं जल्दी से खोलूं फिर दोबारा। मुझे किसी का पता चला था कि उन्होंने बताया कि इतना वाकई, वो फिर करीन की मिसाल है कि उन्होंने कहा इतना ज्यादा वो फलां कोई है जो कि कुरान की इतनी शौक रखते हैं कि जरा सी देर होती है ना वो फौरन कहीं पे भी बैठे हैं फौरन कुरान खोल लिया, कहीं गए हैं फौरन कुरान खोल लिया, जरा सा भी 5 मिनट में मिले हैं वो फौरन कुरान खोल के बैठ जाते, यानी थोड़ी जरा मौका मिला फौरन कुरान को खोला उसके साथ बैठ गए। ये है कुरान का करीन बनना। तो हम देखें हमारी जिंदगियों में कैसे है ये, आपको टेस्ट भी इसलिए दिया जाता है कि ये आपका करीन बन जाए। जाहिर है जब टेस्ट आता है तो आपको ज्यादा इसके साथ वक्त लगाना पड़ता है, तो ये तो एक बहाना होता है, नंबर नहीं, बहाना है ये सिर्फ कि आपका वक्त इसके साथ गुजरे, आपको तरीका आए कि कैसे मैंने इसके साथ ज्यादा बैठना है। और लीता शका, ये इसका शाने नजूल ये है कि जब मुसलमान ना उनके साथ ये हो गया था कि इब्तदा में जब कुरान पाक नाजिल हुआ वो साथ साथ याद करते थे और साथ साथ वो अपने उसमें पढ़ते थे, नमाजों में भी, इसमें भी, तहज्जुद में भी, जैसे जैसे कुरान का हिस्सा बढ़ने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा कराम भी तमाम रात इबादत के लिए खड़े रहते थे, नमाज तहज्जुद में उसको तिलावत करते रहते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पैर मुबारक पर सूजन हो गई थी और दिन भर इसकी फिक्र में रहते थे कि किसी तरह इन लोगों को हिदायत मिल जाए, कुरान की दावत देते रहते थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को इन दोनों किस्म की मुशक्कत से बचाने के लिए फरमाया कि हमने ये इसलिए तो नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए, कि तमाम रात आप जागे में, तमाम रात आप इसकी तिलावत में लगे में, इसकी जरूरत नहीं है। इस आयत के नजूल के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी बन गया था कि शुरू रात में आराम फरमाते थे तो आखिरी रात में जाके तहज्जुद अदा करते थे। ठीक है, तो इस तरफ इशारा है, और ये कि भाई आप इसको ऐसे मुशक्कत ना बनाए। और फिर काफिर भी ताने देना शुरू हो गए थे कि इन बेचारों को तो देखो कुरान इनके ऊपर क्या आया, इनकी तो जिंदगी मुसीबत हो गई, कितनी मिजरेबल लाइफ है इनकी। आपको तो नहीं कभी कोई कहता कि ये क्लास क्या लेने शुरू हो गई, बेचारी की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई, हर वक्त बस इसका क्लास का ध्यान ये वो। अरे क्लास क्या, कुरान ही है, किस यहाँ पे किसी की पर्सनल बातें तो नहीं हो रही, ठीक है, कोई और इधर उधर की तो कोई भी बात नहीं होती। तो ये कुरान के, जब से ये कुरान के साथ जुड़ी है, बस से तो बेचारी की जिंदगी मुश्किल हो गई। तो फरमाया नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये बदबख्ती नहीं है, ये तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को, खैर हम तो कोई रात रात भर नहीं पढ़ते, तो इसलिए हमारा वो वाली तो चीज नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि अगर कभी कोई कहे कि कुराने पाक की तरफ आने की वजह से इसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई, तो नहीं, मा अंजलना अलैका कुरान लितशका, ठीक है। दूसरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर ऐसी थी कि जब अल्लाह ताला ने एक दफा जिम्मेदारी आप पे डाल दी ना, तो अल्लाह ताला को कभी रिमाइंड नहीं कराना पड़ा कि आप ये काम कर भी लें, अब कर भी लें, अब याद याद है आपने इस काम की कमिटमेंट की थी, जैसे हम लोग करते हैं कि हम जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि हम इंचार्ज बन गए या लीडर बन गए या हम मैं बड़ी एडमिन बन गई, तो अब उसके बाद बार बार याद दिलाना पड़ता है, बहनों काम कर लो, अपना शौक से कर लो, देखो ये काम आपने, इसकी जिम्मेदारी ली है, प्लीज इस काम को अच्छे तरीके से करें। वो याद ही नहीं रहता, बस उसका शौक है कि मेरे पास जिम्मेदारी आ गई और मैं, मुझे ये बड़ा ऑनर मिल गया, उसके बाद नहीं याद रहता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उलट था, अल्लाह ताला को ये कहना पड़ा कि आप अपनी जिम्मेदारी के मामले में इतनी अपने आप पे सख्ती ना करें, इतना ना अपने आप पे बोझ डालें, ये अपने आपकी जिंदगी मुश्किल थोड़ी बनाने के लिए भेजा है, ठीक है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद सोना शुरू किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था ना, उनका गम क्या था, क्यों बेचैन होते थे कि ये लोग क्यों नहीं समझ लेते, क्यों नहीं मान जाते, इनको क्यों नहीं हिदायत इनके दिल में चली जाती, इस वजह से इतना गम करते थे। और आप देखें कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी पता चलता है, फरमाया ना मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल तो ऐसे जैसे किसी ने आग जलाई और पतंगे उसमें जा जाके गिरते हैं, और एक आदमी है जो उनको बचा रहा है, उनको हटा रहा है इस आग से, लेकिन वो है कि वो जा जाके पड़ रहे हैं। तो फरमाए मेरी तुम्हारी मिसाल ऐसे ही, यानी जैसे कि एक आग जली हुई है और लोग आग में जा जाके गिरने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर से पकड़ पकड़ के लोगों के आग से बचाना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों का हाल ही है, उन्होंने कहा हमने तो आग में गिर के रहना। सोचिए ये आपकी हालत थी, नहीं कैसे उनको फील होता था। तो अल्लाह ताला ने बता दिया आप इतने ज्यादा अपने आप को हलकान ना करें, इतना ज्यादा इन चीज के इन इन के पीछे ना अपने आप को यानी तकलीफ में रखें। तो कुरान मुशक्कत के लिए नहीं है, ये रहमत है। बल्कि एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जब अल्लाह ताला बंदों के अमाल का फैसला करने के लिए अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा होगा, तो उलामा से फरमाएगा, इल्म वालों से, कि मैंने अपना इल्म और हिकमत तुम्हारे सीनों में सिर्फ इसलिए रखा था कि मैं तुम्हारी मगफिरत करना चाहता था उन खताओं की जो तुमसे सरजद हो गई हैं, और उनको माफ करना चाहता था, और मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं माफ कर दूं। यानी ये इल्म इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हें मुसीबत में अल्लाह ताला डाल दे, बल्कि ये इल्म किस लिए दिया था अल्लाह ताला ने, ताकि तुम्हें बख्श। सुभान अल्लाह। तो आप समझ आ गए कि किस तरह की मुशक्कत थी, कि जैसे जैसे कुरान नाजिल हो रहा था तो आप सल्लम सारी सारी रात जागते थे इससे भी, और दूसरे इनके ऊपर जो गम था, जो तकलीफ, जो इनकी वजह से अफसुदगी और जो अफसोस इनके ऊपर, वो उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप ना अपने आप को तकलीफ में डालें। ये तज़किरा है, जिक्र है, नसीहत है आपकी, यानी जिम्मेदारी तो सिर्फ पहुंचा देना है, आप इतने अफसोस में ना जाएं कि ये क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तज़किरा है कि तज़कीर कर दें, नसीहत कर दें, कोई ईमान लाता है लाए, नहीं लाता तो ना लाए, ठीक है। किसके लिए है लेकिन? लिमई यक्षा हो, यक्षा कहते हैं खशियत, ऐसा खौफ कि जिस हस्ती के लिए हो उसकी अजमत का एहसास दिल में, कि ना यानी जिसको कहते हैं ना उसकी हैबत, खशियत। देखिए एक होता है खौफ, खौफ तो किसी चीज का भी हो सकता है, मगर खशियत जो होता है ना वो डिफरेंट चीज होती है। उस लिखते तो हैं हम जो डरता हो, डर डर तो अब हर चीज का, किसी से सांप से भी कोई बंदा डर जाता है तो। लेकिन ये कुरान में खौफ का भी लफ्ज है, वो भी अरबिक का ही लफ्ज है, लेकिन खौफ और खशियत में ये फर्क है कि खशियत किसी की हैबत, किसी की अजमत का एहसास, उसकी वजह से जो दिल में रोब आ जाता है ना, वो है खशियत। तो जब इंसान को पता होता है ना कि ये कलाम करने वाला कौन है, जब इंसान उसको जानता है ना कि ये किसका कलाम है, ये कुरान किसका कलाम है, तो फिर वाकई इस कलाम का रोब भी और फिर नसीहत भी हासिल होती है। और अगर अल्लाह ताला को नहीं पहचानते ना, तो फिर ना खशियत आती है ना ही नसीहत इससे पकड़ते हैं। इसी वजह से तो कहते हैं ना, कई लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है, क्या बात है कि उनको कोई भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि उनको पता ही नहीं है ये किसका कलाम है। अल्लाह का कलाम है, बस ऐसे बोल दिया। अल्लाह ताला की पहचान है, उसकी खशियत है, क्योंकि ये नसीहत उसके लिए बनेगा, लिमई यख्शा, इसमें अल्लाह ताला की अजमत का एहसास हो, वो कौन रब है, वो कौन है। ऐसी एक मिसाल से समझे ना, कोई कह दे ऐसे ही राह चलता, कोई कह दे इसको पकड़ लो, तो कोई तो बज्जो नहीं देगा, लेकिन अगर पुलिस कहे कि इसको पकड़ो, पकड़ लो इस बंदे को, तो दिल डर जाता। और यही बात मुल्क का कोई वजीर आजम कहते कि फलां को पकड़ लो, तो सोचें ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो फर्क किस में हुआ? इसको पकड़ लो तो सारे ही कह रहे हैं, फर्क है स्पीकर में, कौन है स्पीकर, कौन है कहने वाला, उससे बात का असर ही डिफरेंट होता है। सोचें कायनात का रब, जिसको ये पता हो कि कायनात का रब कौन है और क्या मतलब है इसका रब होने का, वो फिर जब कोई बात कहे तो जिसको इल्म है, जिसको उसकी पहचान है ना, हो नहीं सकता उसके दिल में हैबत ना आए, उसका दिल डर ना जाए, ये किसका कलाम है, रोंगटे ना खड़े हो जाए। इसीलिए तो सूरह अनफाल के शुरू में है ना कि उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस कुरान की आयतें सुनते हैं, उनको पता जो है ये कलाम किसका है, फिर वो नसीहत भी लेते हैं, फिर उनको पता है कि वो ये बातें किसने कही, क्योंकि अजमत है दिल में उसके लिए। तो बाकी लोगों के लिए ये कोई नसीहत नहीं बनता, इसलिए कि उनके दिल में कोई धाक ही नहीं, अल्लाह ताला की धाक बैठी ही नहीं, कोई हैबत ही नहीं, कोई अजमत का उसकी एहसास ही नहीं। तो जब ये कहा जाए ना इल्ला तस्किरा तल्लीमा यक्षा, तो फिर आप सोच लें कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग यानी नसीहत पकड़ते हैं जो सिर्फ खशियत रखते हैं। तो खशियत अगर हमारे अंदर होगी ना अल्लाह ताला की, समझ आ गई ना खशियत क्या है, तो तब हम इससे फायदा उठा सकेंगे। अच्छा, ये जो दो आयते हैं ना, इनको अगर मिला के एक जुमले में लिखा जाए तो ग्रामेटिकली ये डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें तकदीम और ताखीर हुई भी है। तकदीम और ताखीर क्या होती है? कुराने पाक में कई जगह पे ये है कि जो चीज बाद में, वैसे अरबिक में अगर बोली जाए तो जो बाद में आनी है उसको पहले कर दिया, जो पहले आना था उसको बाद में कर दिया। और ये तब होता है जब किसी चीज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करना हो, को बहुत ताकीद करनी हो। तो असल में इसका, इसको कैसे लिखा जाना था? मा अंजलना कुरआना अलैका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा वली अल्ला तश्का, ऐसे लिखा जाना था, ला तश्का एंड में होता, कि हमने नाजिल नहीं किया कुरान को मगर नसीहत उसके लिए जो डर जाए, और इस चीज के लिए नहीं कि आप मुशक्कत में पड़े, इस तरह होना था। लेकिन मुशक्कत को पहले लाया गया, लितश्का पहले लाया गया, इससे पता चलता है कि बात किस चीज पे, जोर किस पे दिया गया, लितश्का पे, कि आपको मुश्किल में नहीं डालना। इसका मकसद, मकसद जो असल है वो बाद में बताया गया, मकसद नसीहत है, ये बाद में कहा गया। और क्या नहीं करना कि आपको मुशक्कत हो, तकलीफ हो, ये नहीं है मकसद। आपको अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप मुश्किल में पड़ जाएं, आप गम में रहें, यहां से पता चला कि अल्लाह ताला की, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या था, और नंबर टू ये पता चलता है कि अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनकी तकलीफ को पहले मेंशन किया गया कि आपको तकलीफ में डालना ये अल्लाह ताला को कहीं गवारा नहीं है। और ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे और गम आपको भी घेर लेता था, आपके दिल को भी दर्द महसूस होता था। कोई ऐसे नहीं थे कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो इतने पहुंचे हुए थे, उनको क्या फर्क पड़ता था। नहीं, ऐसे नहीं है, वो भी इंसान थे। तो अल्लाह ताला तसल्लियां दे रहा है, हमने इसलिए तो नहीं नाजिल किया। तो अब से हम कुरान को अपने लिए मुश्किल और मुसीबत ना समझे प्लीज। अब बोल के तो कोई भी नहीं कहता, लेकिन असल बात यह है कि जब इसकी तरफ आना होता है तो क्या मुसीबत लगता है या रहमत लगता है? रहमत के पर तो भाग भाग के हम जाएंगे, हम तो चाहते हैं हमें रहमतें मिले, तो फिर इसकी तरफ क्यों नहीं भाग के आते? इससे क्यों दिल में घुटन होती है? और एक और बात इससे पता चलती है कि किसी को भी उसके गम में तसल्ली दी जा सकती है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से को डांटा नहीं कि आपने क्या गम लगाया हुआ, आपको क्या जरूरत है ऐसे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी तसल्लियां दी। इससे हमें पता चलता है हम किसी को गम में देखे ना तो ऐसे नहीं कि उसको डांट रहे शुरू जाएंगे, तुम क्या इतना कुरान पढ़ती हो और तुम ये शुरू हो गई और ऐसे कर गए, नहीं, ठीक है, उसको तसल्ली दे। ये किसी को गम के अंदर तसल्ली देना ये अल्लाह ताला की भी सुन्नत है। तंजीलम मिम्मन खलकल अर्द वस्समावात, ये तो नाजिल करदा है उस वक्फे वक्से से उसने उतारा, यानी ये कुरान क्या है? ये कोई मुसीबत नहीं है, मुशक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, ये तो नसीहत है उसके लिए जो डरता है, ये तो उसकी तरफ से नाजिल करदा है। अब इसको सीक्वेंस आप समझ रहे हैं ना, उसकी तरफ से नाजिल करदा है जो कि जमीन का भी खालिक और आसमानों का भी खालिक। अब जमीन का लफ्ज यहाँ पे और आसमान जो बुलंद है, जमीन का लफ्ज पहले आया और आसमानों का बाद में आया, जबकि आप देखते हैं दूसरी जगहों पे आसमानों का हमेशा पहले आता है और जमीन का बाद में। तो क्यों ऐसा हुआ? असल में जो लोग इसी दुनिया में और इसी जमीन के साथ चिपके हुए हैं, इसी जमीन की चीजों में गर्क हैं, उनको बताया गया कि इस ये कलाम उसकी तरफ से आया जिसने इस जमीन को पैदा किया, और नजर उठा के देखो तो आसमान को भी उसी ने बनाया, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो कुरान दिलों के लिए ऐसे है जैसे जमीन के लिए बारिश है, इस तरह दिलों को जिंदा कर देता है, जैसे मुर्दा जमीन को पर बारिश पड़ती है तो वो जिंदा हो जाती है, उस पे हरियाली आ जाती है, इस तरह दिलों में फूल पौधे उग जाती हैं, इस तरह दिल सरसब्जो शादाब हो जाता है, उसकी वीरानी खत्म हो जाती है, जैसे जमीन की वीरानी खत्म हो जाती है, बंजरपन खत्म हो जाता है, ठीक है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, और ये किसकी तरफ से है ये कलाम? ये तो उस रहमान का कलाम है। अंदाजा करें यहाँ पे अल्लाह ताला, अल्लाह नहीं आया, अर्रहमान वो तो रहम करने वाला, रहमान का ये कलाम है, इसीलिए तो सूरत रहमान में भी है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। तो पहली बात, रहमान के रहम की मैनिफेस्टेशन, उसका इजहार कैसे हो रहा है कि उसने कुरान की तालीम दे दी। ये उस रहमान का रहम है, उसकी रहमत है तुम्हारे ऊपर, ये मुशक्कत नहीं है। वो रहमान जो अलल अर्श इस्तवा, अर्श पे मुस्तवी है। इस्तवा का लफ्ज कुरान पाक में 7 टाइम्स आया, मुस्तवी लफ्ज का मतलब है बुलंद होना। तो अर्श पे कभी आपने ये नहीं कहना वो अर्श पे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या क्या, याद रखिए हमने हमेशा कहना मुस्तवी है, उस पे बुलंद है। वो कैसे है वहां पे बुलंद, हमें नहीं पता, हम उसकी कैफियत नहीं जानते और ना हमने बयान करनी है, समझ आई बात? ये हमेशा याद रखेंगे आप इस तबाह के साथ इस बात। और अर्रहमान ये नहीं हम कह सकते हर जगह है, वो पत्ते के अंदर भी है, फूल के अंदर भी है, मेरे आगे भी है, इस कमरे के अंदर भी है, उधर भी है, उधर भी है, ऐसे नहीं। कुराने पाक में बार बार आता है वो अर्श पे मुस्तवी है, अपनी जात के एतबार से वो अर्श पे मुस्तवी है, अपनी सिफात के एतबार से, अपने इल्म, अपनी कुदरत, अपनी देखने सुनने इन इन सब के एतबार से उसकी कुदरत हर जगह है, उसका देखना हर जगह है, उसका सुनना हर जगह है उसने, लेकिन अपनी जात के एतबार से अल्लाह ताला माफ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, हम कहेंगे अल्लाह ताला यहाँ पे इस कमरे में है, ये बहुत गुस्ताखी की बात है ना। वो लोग उसमें क्या देते हैं, बेध्यानी में, कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह ऐसे कहना ये सही नहीं है, जात के एतबार से हर जगह नहीं, वो तो अर्श पे मुस्तवी है, ठीक है। और इस चीज की तशबीह भी नहीं हमने कुछ देनी, यानी कि ऐसे वो है, ऐसे है, या इस तरह से है, जैसे फलां होता है बैठता है या फलां, ना इसकी कोई तावील करनी है कि उसको एक्सप्लेन आप करने शुरू हो जाएंगे किस तरह से बैठा है या खड़ा है या क्या है, वो भी नहीं करना, ठीक है। और इसी यहाँ से ये इस अल्लाह ताला के नाम से अर्रहमान को बाज मुफसरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला का जैसे जाती नाम है अल्लाह, इसी तरह उसका एक जाती नाम उन्होंने काउंट किया अर्रहमान, कि बाकी सारे सिफाती नाम है, तो बाज ने अर्रहमान को भी जाती नाम लिया है, इसीलिए आप कभी भी अर्रहमान रहमान नाम किसी का नहीं रख सकते। अब्दुल रहमान रख सकते हैं, अल्लाह ताला का फेवरेट नाम है, अब्दुल्लाह रख सकते हैं, ये भी अल्लाह ताला की, ये दो नाम ना फेवरेट है उसके, ठीक है, अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान। तो लेकिन सिर्फ रहमान रखना या सिर्फ अल्लाह तो कोई भी नहीं कर रखता, लेकिन सिर्फ रहमान रखना ये नहीं सही है, ठीक है। और ये अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी है ऐसे ही कहना। आपको पता है अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए इस वक्त 4 फरिश्ते, और जब कयामत आएगी तो 8 फरिश्तों ने उठाया होगा, और हदीस में आता है कि वो फरिश्ते अर्श को तो छोड़ें कि वो कितना बड़ा होगा, लेकिन जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए उसके कान की लौ, ये जो कान की वो नीचे आती ना लौ, इस जिसमें आप बाली पहनते हैं, और कंधे के दरमियान का फासला 700 साल का है, कि कोई इंसान 700 साल तक चलता रहे तो वो इतना फासला तो सिर्फ इतना है, तो बाकी यानी ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना हमारे नजदीक, तो शॉर्टेस्ट है ये, कान की लौ से लेके कंधे तक तो बहुत थोड़ा सा, वो भी 700 साल का है, तो कैन यू इमेजिन कि बाकी वो कितना बड़ा होगा फरिश्ता, ठीक है। अल्लाह अकबर, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व मा बैना हुआ हुमा व मा तहत सरा, वो है लहू लिए उसके है, ला जो है ना तमलीक का है, तमलीक का मतलब मिल्कियत, उसकी मिल्कियत है, ओनरशिप है, और उसके लिए ही है, ठीक है, यानी उसका इख्तदार है, उसी की मिल्कियत है, उसी का राज है, उसी की बादशाहत है, समझ आए। तो सारे इसके अंदर ही माने, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ओनरशिप है उसकी, मा फिस समावात जो आसमानों में, व मा फिल अर्द और जो जमीन में, व मा बैना हुमा, और देखना कहीं ये ना भूल जाना, ये समझना आसमानों पे और जमीन पे और बीच में जो कुछ तुम देखते हो आसमानों और जमीन के दरमियान, और चौथी चीज व मा तहत सरा, सरा मैंने आपको बताया गीली मट्टी को कहते हैं, यानी जमीन के अंदर खोते 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 आप वहां तक पहुंच जाते हैं ना जहां पे नमी आ जाती है, फिर पानी निकल आता है ना उसके बाद आगे, जो उसके भी नीचे है, इंसान ना वहां तक पहुंच नहीं सका, नीचे हजारों हजारों मील नीचे जमीन है, ठीक है, अब वहां तक तो इंसान पहुंचे ही नहीं है, कि उसके नीचे क्या है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही का है वो सब कुछ, उसी के इल्म में है, उसी की कुदरत है, उसी की बादशाहत है, वल्लाहु आलम, वहां पे क्या क्या, कोई कीड़ा है, कोई मकौड़ा है, कोई क्या चीजें हैं, कोई जानदार है, कोई बेजान है, अल्लाह ताला को मालूम है। और आज तो तख्त सरा में आप देखें, गोल्ड है, सिल्वर है, फिर ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं, तेल है, ठीक है, सब इसमें, साहिब सरवत भी इसी से है, सरवत कहते हैं ना, नाम भी रखते हैं, तो सरवत मतलब जो ज्यादा, तो मालदार के लिए कहते हैं साहिब सरवत, तो सरा उसी से है। तो सुभान अल्लाह के, तुम इमेजिन करो ये किसका कलाम तुम पढ़ रहे, वो जो अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन उसकी बादशाहत कहाँ तक है, सिर्फ बादशाहत नहीं, उसकी मिल्कियत है, उसकी कुदरत है, उसका इल्म, उसकी पहुंच, सब कुछ बिलोंग करता है उसको, सुभान अल्लाह। तो अब आप देख लें कि कोई चीज इसके बाहर रह जाती, आसमान से तो सातों आसमान है, और हर आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है। हाँ, तो सारा ही जिसका है, सब जगह पे जिसका कंट्रोल है, तुम उसका कलाम पढ़ रहे हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। ये हैं वो बातें जो इंसान के दिल पे हैबत लेकर आती हैं, जो इंसान के दिल में अल्लाह ताला की अजमत पैदा करती हैं कि मैं किस रब के कलाम के आगे बैठी हूँ। फिर मैं तो खत्म ही हो जाती है ना, और मेरा इल्म और मेरा नॉलेज और मुझे बड़ा पता है, वो खत्म हो जाता है। और ये खत्म करने के लिए तो पहला ही ये लफ्ज काफी है, तौहा। अब तुम्हें एक मुश्किल में डाल दिया ना कि तुम्हें नहीं पता इसका मीनिंग, लगा लो खोज, जितनी मर्जी लगा सकते हो लगा लो, कोई यहाँ की बात करेगा, कोई वहां की बात करेगा, कुछ भी नहीं तुम्हें पता कि ये इसका मतलब क्या है। तो मान क्यों नहीं जाते कि मुझे नहीं इल्म, अल्लाह को पता है। घुटने टिकवा दिए इंसान के इन हरूफ मुकतात ने, बेबस कर दिया ना वो। अब इधर उधर टकरे मारता फिर उसको क्या पता कि इसका क्या माना है। तो पहले ये सोच के कुरान के आगे बैठो, मुझे नहीं पता, जो मुझे मेरा रब बताएगा बस वो ही पता। वह इन तजहर बिल कौल, और अगर तुम बुलंद आवाज से बात करो, तुम पुकार के कोई चीज कहो, फइन्नहु यालमु सिर्रा व अख, तो वो तो बुलंद आवाज से बात को तो वो जानता ही जानता है, वो तो उसको भी जानता है जो सिर है, राज की बात है, असरार जो है सिर, सीक्रेट, सीक्रेटली जो कोई बात कहे उसको भी जानता है। वह अखफा, और जो सीक्रेट नहीं, बिल्कुल आहिस्ता खुफिया बात है उसको भी जानता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब एक किसका माना आपने ये लिख लिया ना, एक माना है कि जो सीक्रेटली आपने बात की, किसी के कान में बात की, वो उसको भी जानता है, और जो दिल में छुपी हुई है। देखते हैं, ए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक तहत सरा की बात की ना अल्लाह ताला ने, जमीन के नीचे क्या है उसको भी अल्लाह ताला जानता है, जो गीली मट्टी के भी नीचे चला जाए इंसान, कोई चला जाए वहां, उसका भी उसको इल्म है और वो उसको बिलोंग करता है। और देखें उसके बाद उस बात की जिक्र किया गया जो दिल में भी नीचे है, दिल तक तो पहुंच ही किसी की नहीं, अल्लाह वहां भी पहुंच है। आप मेरे सामने बैठे भी हो, मेरे साथ बात भी कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है, सही है, लेकिन अल्लाह ताला उसको जानता है। सुभान अल्लाह। तो पहले जमीन की अतः गहराइयों की बात, फिर दिल के अंदर गहराइयों की बात, वो उसको जानने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तुम लाउड बात करो वो तो सारे ही फिर भी सुन ही लेते हैं, खैर वो भी हर कोई पूरी बात को समझ ही नहीं सकता, इसकी बैकग्राउंड क्या है, कभी कभी बोल के भी कोई बता दे ना बात समझ नहीं आती, लेकिन वो उसको भी जानता है, और वो भी जानता है जो सीक्रेटली तुम करो और जो दिल में तुमने रखी हुई है, वो भी। एक ये माना। दूसरा माना ये है कि फइन्नहु यालमु सिर्रा, वो जानता है सिर को भी, यानी जो दिल में बात है राज की बात है, वह अखफा, जो उससे भी ज्यादा छुपी हुई है। अब वो कौन सी बात है, जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो अभी तक दिल में आई ही भी नहीं, अभी आनी है दिल में, वो उसको भी जानता है। अल्लाह अकबर। दिल की सोच को तो मैं भी ना जानू कि मेरे दिल में अगली सोच क्या आनी है, और मेरा रब वो भी जानता, उससे किधर छुपेंगे। सोचें दिल के अंदर बातें छुपा के हम सोचते हैं, हमने सारी दुनिया से छुपा ली, किसी को क्या पता मेरे दिल में क्या बात, किसी को ना पता हो सही, उसको तो पता है। तो तुम जो जोर से बोलते हो ना, वो तुम ये कमरे में नहीं सिर्फ बोलते, घर में नहीं सिर्फ बोलते, उसकी गूंज कहाँ तक चली गई, आसमानों में भी सुनी जा रही है। ये जो तुम्हारे दिल में बातें हैं ना, दिल ही दिल में बातें करते हो, सोचते हो, अच्छा ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, उसने ये कहा, उसको ये कहा, उसको ये कहूंगी, वो उन बातों को भी सुन रहा है अल्लाह अकबर। और जो अभी आई भी नहीं, दिल में ही नहीं आई, ख्याल ही नहीं पैदा हुआ उसको। कभी कभी हम ये कहते हैं ना, आई डोंट नो हाउ टू से इट, मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस तरह बताऊं, मुझे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जाता ना इंसान से, अपना आप एक्सप्रेस नहीं किया जाता, किसी से समझ नहीं आती बयान कैसे करें। कभी कभी ऐसे बेबस हो जाते हैं ना, कैसे किसी को अपना दिल का हाल बताएं। आप बाज दफा वर्ड्स ही नहीं होते उसके लिए, बाज दफा वर्ड्स समझ नहीं आते हम, जाहिर है इतने इंसान में एक कमजोर सी मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तुम्हें उससे बात करने के लिए ना कोई वर्ड्स लाने की जरूरत ही नहीं कि तुम इजहार करो तो फिर तुम कुछ बोलो तो उसको पता चलेगा। आप जिस भी सिचुएशन में जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, जो रातों को आंसू आप बहाएं, जो दिली दिल में बातें करें, जो दिली दिल में दुआएं मांगे, जो वो आ है ना जो दिल से निकलती है, वो तक उसके अर्श तक पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुदूर। तुम ऊंची बोलो या आहिस्ता बोलो, वो तो तुम्हारे दिलों के अंदर के हालों को भी जानता है। तो कभी ये ना सोचे कि अल्लाह ताला से बात करते हुए कि मैं कैसे उसको बताऊं, मैं कैसे दिल का हाल बयान करूं, वो सब कुछ ही जानने वाला है। जहां पे भी हूं, जिस वक्त भी हूं, जिस जगह भी हूं, जिस हाल में भी हूं, ऊंची बोले दिल में बोले। कभी कभी मजमों में बैठ के इंसान मुंह से नहीं बोलता लेकिन दिल में कोई बात कहता है, अल्लाह ताला उसको भी सुनता। अल्लाह हु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। समझ आ रही ना ये आयतें कितनी जबरदस्त हैं, क्या चीज होगी जिसने उमर रजी अल्लाह ताला के दिल को पिघला दिया, उमर को उमरे फारूक बना दिया, उमर को रजी अल्लाह अन्हु बना दिया। बड़ी बात है ना इन आयात में। अल्लाह वो है नहीं कोई इलाह मगर वो ही, इबादत के लायक कोई और है ही नहीं, वो ही है इबादत के लायक। और अल्लाह जो अल्लाह ताला का नाम है, जो बहुत ऐसा नाम है जो मैंने आपको बताया कि ये नाम आज तक किसी ने नहीं रखा, इतनी इबादत हुई अल्लाह के सिवा औरों की, शिर्क तो कब से चल रहा है लेकिन किसी ने भी अल्लाह नाम नहीं रखा अपने खुदा का, जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजा करते थे। और ये जो एक नाम है ना, इसमें अल्लाह ताला की तमाम सिफात इस एक नाम में जमा हो जाती है। अच्छा एक बात आपको बताना मैं भूल गई कि तीन सूरतें ऐसी हैं जिसमें इस्मे आजम है, अल्लाह ताला का वो नाम जो जिसको आजम कहते हैं, यानी उससे जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। और वो तीन सूरतें कौन सी हैं? एक अल बकरा, एक आले इमरान और एक सूरह ताहा। तो इस वजह से भी इसको इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़े मतलब है, इस सूरत की शान है। और दूसरे ये कि इस सूरत की एक फजीलत ये भी बयान की गई है कि इस सूरत को जो पढ़े, वैसे तो उसके बारे में कई और रिवायात जो सारी जयीफ है वो आई है कई, लेकिन एक रिवायत जो सही आई है कि ये वो सूरत है जो एताक है, यानी अतीक से ना आजाद करने वाली, तो ये आजाद करती है मुसीबतों परेशानियों से, मसाइल से, कुफ्र शिर्क से, आखरत की सजा, आजाद करने वाली। अब आप सोच लेना कि जो भी इंसान के मसले मसाइल परेशानियां हैं ये उनसे आजाद कर देती। और ये पुराना खजाना है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया। बल्कि ये जो हम सूरतें पढ़ चुके हैं 17 से लेकर 21 तक, सूरह इसरा, सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तौहा और सूरह अंबिया, ये पांच सूरतें हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये आजाद करने वाली हैं। और ये पुराना खजाना, यानी ये बहुत शुरू में नाजिल हुई थी, और दूसरी ये आजाद करने वालियां भी हैं, यानी हम ये अब आप सोच लेना किस चीज से आपको आजादी चाहिए, कुफर से चाहिए, जहन्नुम से आजादी चाहिए, मुसीबतों और परेशानियों से आजादी चाहिए, उन सब के लिए। तो आप देखें ना कि इनके वाकई फिर जब आप पढ़ते भी हैं इसके सब्जेक्ट पे गौर फिक्र करें तो आपको कितनी अल्लाह ताला की पहचान होती है और उसकी अजमत आती है, और कैसा ईमान बढ़ता है ना इंसान का, ये समझ आती है कि वाकई अल्लाह ताला का नाम रहमान भी, अब देखें पिछली सूरत में भी और इसमें भी था, तो उसकी रहमत भी नजर आती है। लहुल अस्मा उल हुस्ना, उसी के लिए हुस्ना, हुस्ना हुसन से हुस्न का जो मुअन्नस है वो हुस्ना है, हसन का, तो हसन से मतलब है कि बेस्ट, एक्सीलेंट, खूबसूरत, तो उसके लिए सारे खूबसूरत नाम है। इसीलिए अल्लाह ताला को आप जब भी उसका नाम लें तो अल्लाह ताला कहें, जैसे कुरान में भी आया ये, यानी आला बुलंद, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत करें कहें, या अल्लाह ताला के और कोई नाम को अल्लाह रहमान रहीम कहें ऐसा, लेकिन प्लीज अल्लाह मियाँ ना कहा करें। मियाँ हम किसको कहते हैं? शौहर को, ठीक है, और मियाँ एक इंसानों के लिए नाम यूज होता है, या मियाँ जी कहा जाता था बुजुर्गों को, तो वो जो बेचारे भोले लोग थे पुराने, उनको तो उनको यही लगता था कि मियाँ एक बड़ा बुजुर्गी का वाला लफ्ज है, इज्जत वाला लफ्ज है, तो वो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ। तो कम अज कम हम जो कुरान के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ना ऐसे कहा करें, अल्लाह सुबहाना व तआला कहते हैं, अल्लाह रब्बुल जल जलाल वल इकराम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, अल्लाह ताला कह दें, ठीक है, लेकिन ये ना कहें। तो अल्लाह ताला वो है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं। अब इलाह का वर्ड भी अगर समझ लें बंदा, तो बहुत समझ आ जाए कि ये कलिमा ही है ना, ला इलाह इल्ला अल्लाह, पहले आ गया अल्लाह, पहले लाया गया नाम, फिर ला इलाह इल्ला हुआ, ये तो हमारा कलिमा है। कोई इबादत के लायक ही नहीं मगर वो जो अल्लाह है। तो इलाह वो ही होता है जिसके इंसान की जिंदगी में सबसे टॉप पे जो, क्योंकि इबादत जो होती है ना, इबादत वो ऐसे नहीं कि मैं उसकी इबादत करती हूँ, इबादत करती हूँ और उसके बाद सारा बहुत अपनी मर्जियां करती हूँ। इबादत उस इबादत के अंदर ही इताअत भी है, इबादत के अंदर आजी है, इबादत के अंदर मोहब्बत है, इसके माने में ही इबादत के अंदर गुलामी है, ठीक है। तो ये कौन सी इबादत है जो हम करते हैं और सोचते हैं कि मैं इबादत कर रही हूँ और उसके बाद मनमानियां अपनी कर रही हूँ, ये कौन सी इबादत होती है? लिहाजा इबादत को जब आप इलाह कहें ना कि वो ही इबादत के लायक है, तो समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रही हूं, मेरा नफ्स इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह है इबादत के लायक। और इसकी सिर्फ तस्बीहां करने की बात नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमारा आखिरी कलिमा यही हो दुनिया से जाते वक्त कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये समझ भी होनी चाहिए कि मैं क्या कह रही हूं, ठीक है। जिसका ये आखिरी कलमा हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। और जो अस्माए हुस्ना, अब 99 कहते हैं ये उलमा ने जमा किए, लेकिन अल्लाह ताला के इसके अलावा भी कई नाम है जिनका हमें नहीं पता है, तो आप 99 याद कर लेते हैं तो उसके लिए भी बशारत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो जन्नत में दाखिल होगा। और इन नामों को सिर्फ रटना नहीं है, इन नामों के मुताबिक जिंदगी भी गुजारनी है। अल्लाह ताला को वाकई पर रहमान समझना है, उसको रहीम समझना है, उसको रजाक समझना है, उसको अल अलीम समझना है, उसको अल हफीज समझना है, तो ये सारे फिर नामों के मुताबिक जिंदगी भी गुजारें कि उन नामों को याद रखें जब जब वक्त आए। लेकिन अगर हमें नामों का फिर रट लिया और मतलब ही ना पता हो, इसलिए हमारी एक अस्माए हुस्ना के ऊपर सीरीज भी है, आप लोग जरूर सुनिए, उससे ईमान ताजा होता है। वहल अता का हदीस मूसा, और क्या आई आपके पास मूसा अलैहि सलाम की बात? ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आई है कि नहीं आई, आप इसका जवाब दें। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे पूछूं आपको पता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसका जवाब दें नहीं मुझे नहीं पता या हाँ मुझे पता है, बल्कि ये क्या है, क्यूरियोसिटी वो करने के लिए, पैदा करने के लिए या तवज्जो हासिल करने के लिए, आपको पता है, और फिर इंसान कहता है फौरन मुतवज्जे होता है कि कोई बात मुझे बताने लगा है। तो क्या आई है आपके पास एक बात मूसा अलैहि सलाम की? अब यानी हदीस का लफ्ज आया यहाँ पे, हदीस कोई नई बात को कहते हैं अक्सर, तो ये यानी अगर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मूसा अलैहि सलाम का जायरा थोड़ा पता तो था ही, लेकिन अगर पहले पता भी है तो अब एक नए तरीके से बात आपको बताई जाएगी, ठीक है। और दूसरी ये कि अगर आपको पता भी है तो अब एक और एंगल इसमें होगा जो आपने शायद पहले ना देखा हो, चाहे आपने कितनी दफा पहले उनकी बात सुनी हो, मगर हर दफा आप देखें कि मूसा अलैहि सलाम का किस्सा भी आता है तो डिफरेंट तरीके से आता है। और वैसे भी कुरान पाक की कोई भी बात हो आप देखिए हर दफा डिफरेंट तरह से असर करती है ना। अब जिन्होंने पहले भी कोर्स लिए हैं उन्होंने शायद यही सूरत पहले पढ़ी है, लेकिन वो उस वक्त डिफरेंट तरह से असर करेगी, आज डिफरेंट तरह से असर करेगी, आपके जो हालात चल रहे थे तो उस तरह ही कुरान आपको एड्रेस करता है, ठीक है। तो इससे एक तरह से शौक पैदा किया गया, अल्लाह का हदीस मूसा, और यहां से फिर मूसा अलैहि सलाम का किस्सा शुरू हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम को मूसा अलैहि सलाम के जरिए तसल्ली दी जाती है। और क्या सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम को तसल्ली दी जाती है और सहाबा कोई, और हम क्या वैसे ऐसे ही पढ़ लें? नहीं, हमारे लिए भी तसल्ली है जो जिन हालात से भी गुजर रहा है ना, अगर राहे हक पे चलने की वजह से आपको कहीं पे भी सताया जा रहा है या कहीं आपको मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप हक बात पे हैं, आप सही पे हैं, लेकिन उसकी वजह से अभी हालांकि हम सोचते हैं हम तो सही हैं फिर तो मेरे पर कोई मुश्किल ही नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही है ना हमारा जहन, भाई मैं गलत करूं तो फिर तो ठीक है, समझ आती है मुसीबतें आ रही हैं मुश्किल आ रही, मैं तो सही हूं फिर क्यों ये मेरे साथ हो रहा है। तो उस वक्त ये सोच लें कि मूसा अलैहि सलाम पे क्या गुजरी थी, वो भी तो सही थे, वो भी तो हक पे थे, लेकिन वो इस रास्ते में उनको क्या क्या मसाइब आए, और कभी भी इंसान फिर उस वक्त अकेला ना खुद को फील करे, मैं तो पता नहीं अकेली ये सब बर्दाश्त कर रही हूं और पता नहीं मेरे ऊपर ये मुश्किल आ रही है। नहीं, देखिए याद रखें कुरान पाक कोई स्टोरी बुक नहीं है, मगर स्टोरीज के जरिए हमें समझाया जाता है, हमें कोई सबक दिया जाता है, हमें हमारे लिए कुछ उस स्टोरी के अंदर होता है। तो मूसा अलैहि सलाम का आपको पता है कि जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा है, जिस पैगंबर का सबसे ज्यादा जिक्र है ना कुरान में वो मूसा अलैहि सलाम, इनका किस्सा 37 सूरतों में आया है और 600 के करीब आयात में इनका जिक्र है, सुभान अल्लाह। और इनका नाम 130 मरतबा नाम लेके इनको जिक्र किया गया, मूसा, कितना प्यारा नाम है ना फिर मूसा। और आज तो एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से भी इनकी बात पढ़ेंगे जो सबसे ही फेवरेट है मेरी। तो मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी में बड़े मोड़ आए, और आपने बहुत सारी बातें सूरह बकरा में भी इनके बारे में पढ़ी और भी सूरतों में, बहुत उतार चढ़ाव से इनकी जिंदगी गुजरी है, पैदाइश से लेकर और एंड तक के इनके वाकयात कुरान में डिफरेंट जगह पे आपको मिलेंगे बिखरे हुए। तो आप इनकी जिंदगी से, हर इनकी जिंदगी के फेज में आपको अपने लिए कोई रहनुमाई मिलेगी। तो अब यहाँ पे आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो मूसा अलैहि सलाम का वो वक्त है, जबकि जैसे कि आपको सबको स्टोरी तो पता है तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली सिर्फ वहां से ही लेती हूँ कि जबकि मूसा अलैहि सलाम मदियन के अंदर जहाँ पे वो जॉब भी कर रहे थे, जहाँ पे उनकी शादी भी हुई, और शुएब अलैहि सलाम कहते हैं कि वो नबी थे जिनके घर पे ये रहे थे, 10 साल वहां पे रह के अब वहां से निकले हैं, 10 साल से निकल के और अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं। रात का वक्त है और सर्दी बहुत है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज रोआ नारा, जब उसने देखा आग को, किसने? मूसा अलैहि सलाम। इज का वर्ड जब आता है तो ये इंग्लिश वाला IS इज नहीं है, बल्कि ये इज है कि याद करो, जरा अपने जहन में लेकर आओ, जरा जस्ट पिक्चर करें इस चीज को, इमेजिन करें कि क्या हुआ जब उन्होंने आग को देखा। अब देखें बीवी साथ है और बाज रिवायात में आता है कि इनकी वाइफ जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, तो अब वो साथ हैं और उनको लेकर जा रही हैं, सर्दी है, अब वहां पे होटल वगैरह तो थे नहीं कि कहीं जाके रेस्ट हाउस में किसी में रात गुजार ले, अब वो आग जलाना जरूरी है सर्दी से भी बचने के लिए और रोशनी के लिए भी, अंधेरे कुप के अंदर जा रहे हैं, तो उन्होंने आग देखी। फकौल अली अहली, तो उसने कहा अपने घर वालों से, उमकुसु ठहरो, आहल से अपने आहल से मुराद बीवी भी हो सकती है, और उमकुसु जमा का सीगा है, तो क्या उनकी बीवी के अलावा भी कोई था? तो कहते हैं बाज रिवायात में लिखा हुआ है कि उनके साथ बीवी का पहले भी एक बच्चा था, तो वो बच्चा भी था। बाज में आता है कि नहीं, उमकुसु जो है ना उनके लिए सिर्फ जैसे एज अ रिस्पेक्ट आप किसी के लिए प्लूरल का वर्ड यूज करते हैं इस तरह से, कि जैसे आप ठहरिए यहाँ पे। इन्नी आनस्तु नारन, मैंने मानूस हुआ हूं मैं एक आग से। ये क्यों नहीं कहा इन्नी मैंने देखा, इन्नी रा इन्नी रा एक मैंने देखा, ये नहीं कहा आनस्तु मैं मानूस हुआ, इसलिए कि शायद ये है कि आग एक दफा नजर आई उसके बाद नजर नहीं आई, तो इनको लगा कि वहां पे मैंने देखी है। जैसे एक दफा आता है ना जरा सी आग भाई, और उस तरह। दूसरा बाज कहते हैं कि इनको नजर आ रही थी, दूसरों को नहीं नजर आ रही थी, बीवी को नहीं नजर आ रही थी। तो अब कह रहे मैं मानूस हुआ, असल में लोग अल्लाह ताला बुला रहा था ना वहां पे, तो वो एक दिखाई उनको एक झलक और फिर वो शायद खत्म हो गई। लाली मैं इसलिए जाता हूँ, आप यहाँ पे ठहरे। जैसे आप कहीं देखा जब फैमिली के साथ आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, किसी होटल के बाहर भी जाएं तो हस्बैंड निकल के जाते हैं और जाके कहते हैं मैं अभी देख के आता हूँ अंदर क्या है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। सारी फैमिली तो नहीं चल पड़ती ना, तो आप लोग यहाँ पे बैठो मैं अभी देख के आता हूँ। लाली आती को मिनहा बेखबसिन, शायद कि मैं ले आऊं तुम्हारे पास एक शोला, औ अजिदु आलन नारे हुदा, या मैं आग पर से कोई रहनुमाई ले आऊं, या शायद वहां पे कोई लोग हों जो हमें रास्ता ही बता दे, डायरेक्शन बता दे, नहीं तो कोई कंगारा ही उनसे पकड़ लाऊं ताकि आग था आपने। और दोनों ही चीजें मिल गई ना, देखें मैंने आपको बताया ना, खबस होता है यानी कि कोई एक हिस्सा, तो एक इल्म का एक हिस्सा भी मिल गया और हिदायत भी मिल गई वहां से, रहनुमाई भी मिल गई सारी जिंदगी के लिए मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। अच्छा अब अपनी फैमिली को वहां पे छोड़ के और जा रहे हैं। फलम अताहा, फिर जब वो आए हा उसके पास, यानी आग के, यानी जिस जगह पे आग का उनको लगा था वहां पे जब पहुंचे, नू दिया आवाज दी गई, इसलिए कि आवाज का भी पता तो है नहीं ना कि कौन है, आगे थोड़ी पता है कि क्या कौन है, तो इसलिए मजहूल का सीगा आया कि एक आवाज दी गई, या मूसा ए मूसा। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि अंधेरी रात है और उसके अंदर एक अजनबी जगह है जहां पे कोई नाम लेके पुकार रहा है कि ए मूसा, तो इंसान पे सोचता है कि हाँ एक पता नहीं कौन है। तो वहां पे बाज रिवायात में आता है कि अजीबो गरीब एक हैरत अंगेज मंजर देखा, कि एक बड़ी आग है जो एक हरे भरे दरख्त के ऊपर शोले मार रही है, और उस दरख्त की कोई शाख भी या पत्ता भी कुछ भी नहीं जलता, आग ने दरख्त को घेरा भी हुआ है, दरख्त की रौनक भी है, ताजगी भी है, लेकिन आग भी है। तो ये कितना हैरत अंगेज मंजर है ना। और वहां से फिर आवाज आने लगी, इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं तेरा रब हूं। और आप इसमें देखिए कितनी ताकीदी है, बेशक मैं ही, जिसको आप कह सकते हैं बेशक मैं ही तेरा रब हूं। रब कौन होता है? पहले भी आपको कई दफा बताया तो अब तो ये याद होना हो जाना चाहिए कि रब कौन होता है। रब वो जो पैदा करने वाला, जो पालने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, हिफाजत करने वाला, रिस्क देने वाला, पालने पोसने वाला, परवरिश करने वाला, बड़ा करने वाला, बड़ी मोहब्बत के साथ, उसको रब कहते हैं। तो बताया गया, मैं ये नहीं कहा गया मैं इला हूं, रब हूं, यानी क्या मतलब कि जिसने तुम्हें संभाला, जिसने तुम्हें पैदा किया जब से तुम बेबी थे, उससे पहले से जो तुम्हें संभाल रहा है, परवरिश कर रहा है, तुम्हें पाल पोस के जिसने इतना बड़ा कर दिया, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से हिफाजत में रखा, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें इत्तला दी कि तू दुश्मन तुम्हें कत्ल करने आ रहा है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें एक जगह पर ठिकाना दिया, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें जॉब दी, बीवी दी, घर बार दिया जब कुछ भी नहीं रह गया था तुम्हारे पास, मैं सारा कुछ तुम्हें देने वाला हूँ, मैं वो हूँ। तो रब के लफ्ज में ना बड़ी मोहब्बत होती है, क्योंकि जो पालना होता है ये एक्शन ही जो है मोहब्बत वाला है, माँ पालती है ना, तो पालना जुल्म के साथ तो पाला नहीं जा सकता, किसी को ये नहीं हम कह सकते फलाना है ना वो उसको पाल रहा है जबकि वो उसको जुल्म कर रहा है उसके ऊपर। पालने का लफ्ज ही जब हमारे जहन के अंदर आता है जहन कहता है शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी, रहमत, तो जिसने आज तक तुम्हें संभाला है मैं वो हूं। देखें इस ये जो सारा हम अभी तक पढ़ चुके हैं ना, और ये भी और आगे भी आ रहा है इन्नानी अनल्लाहु ला इला, ये सब अल्लाह ताला का तारुफ है, और जरूरी है कि हम ये इल्म हासिल करें और इसको दोहराते रहें। ठीक है, अना रब्बुका फखला नालाइक, तो अपनी जूतियां उतार दीजिए, इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, ये बेशक आप मुकद्दस वादी में है तुआ की। एक तो सबसे पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम को मुतमईन कर दिया कि आप, मतलब इंसान सोच के ही सोचे डर जाता है कि ये कौन कह रहा है मेरा नाम लेके, किसी को मेरे नाम का भी पता है, और पता नहीं अंधेरे गुफे में कहाँ से कोई आवाज एकदम आ रही है और ये आग सी लगी हुई और ये और मेरा नाम लिया जा रहा है, तो उनको मुतमईन कर दिया, काम डाउन कर दिया कि मैं रब हूं तुम्हारा जो तुमसे बात कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वो खुश नसीब इंसान है जिनको अल्लाह ताला से कलाम करने का शर्फ हासिल हुआ, ये ऑनर हासिल हुआ कि जमीन पे रहते हुए इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने किसी से डायरेक्टली कलाम नहीं किया सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम के, इसीलिए उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, और इसीलिए इसको ये सूरत का नाम भी बाज ने ये दिया। तो वो कितनी बड़ी बात थी, अल्लाह ताला किसी से कलाम करे डायरेक्टली बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी फरिश्ते के, तो मैं तुम्हारा रब, ताकि उनको पता चल जाए कि जो मेरे से बात करने वाला है वो कोई और नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। और ये भी कि आगे जब बात की जाएगी तो देखें, जब मैं जैसे आपको बताया कि बहुत जरूरी होता है कि इंसान अगर किसी बात को तवज्जो देना चाहता है तो वो वही बात होती है जिस को बोलने वाले को वो ट्रस्ट करता है या जिसकी क्रेडिबिलिटी उसके यहाँ होती है। ऐसे ही आता जाता कोई भी बात कर दे तो इंसान उसको तवज्जो से सुनता भी नहीं, लेकिन जब कोई बड़ा बात करता है तो उसको तवज्जो से सुनता है। जब अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया ना कि मैं तुम्हारा रब हूं, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं, अब तो तवज्जो ही तवज्जो है। इसीलिए जिस टीचर से भी आप इल्म हासिल करें, जिससे भी आप पढ़ें, जरूरी है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो कि ये जो हमें बात बताएगा ये कोई सही बात बताएगा। इसलिए कि अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, उसको ट्रस्ट ही नहीं करते, उसके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, तो फिर बात को आप फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कही गई कि अपने जूते उतारने, ये क्या चीज है, ये तो कोई इल्म तो नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा, जूते उतार दे ये क्या है, ये अदब है, अदब। तो यहां से पता चला कि इल्म देने से भी पहले अल्लाह ताला ने अदब सिखाया। बाज रिफायात में लिखा है, बाज तफसीरों में, कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो जूती थी वो मुर्दा उससे की खाल की थी तो इसलिए कहा गया, जो भी हो, लेकिन सबसे पहले मैनर्स। इब्ने मसूद फरमाते हैं ना कि हम ईमान सीखते थे, फिर कुरान सीखते थे, फिर कुरान सीखते सीखते हमारा ईमान बढ़ जाता था। तो ये अदब है जो पहले सीखने की जरूरत है। आज अदब खत्म हो चुका है, हम कहते हैं बस जल्दी जल्दी सिखाएं और हमने जाना है, भाई कितनी देर में आप सिखा देंगे पूरा कुरान, कितनी देर में सीख देंगे, अच्छा 3 साल 4 साल वो तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, जल्दी जल्दी सिखाएं बस 1 साल के अंदर सिखा के हम जाएं। अदब के बगैर इल्म फायदा नहीं देता। हमें अभी मेरे किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई कोर्स बताएं आपके पास जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, सबसे शॉर्टेस्ट, जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा ये फलां फलां हमारे पास कोर्स है। फिर उसके बाद वो सोचती रही और उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मैं सोच के बताऊंगी। ये अभी भी तसल्ली नहीं थी, पूरे हफ्ते में अगर 1.5 घंटा भी निकालना है तो वो भी मुश्किल था, अभी भी तसल्ली नहीं थी। बहुत मुझे तकलीफ हुई क्योंकि वो फारिग उल बाल थी, सारे बच्चे बच्चे शादियां हो गई, उनके भी बच्चे हो गए और तंदुरुस्त भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, चलती फिरती भागती दौड़ती नहीं। और यही सोच रही थी कि या अल्लाह अगर हमें इतना दुख हो जाता है इस तरह से देख के कि अल्लाह क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं इनको समझ आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख होता होगा। और दूसरे ये कि हमें हमें फरागत का टाइम भी मिल जाए ना, यानी रिटायरमेंट वाली जिंदगी भी मिल जाए जिसमें आप कोई काम नहीं, ना तो कोई छोटे बच्चे संभालने हैं, ना बच्चों के बच्चे संभालने हैं, ना कोई कुछ भी नहीं काम है, सारा दिन पता नहीं क्या करते होंगे अल्लाह जाने, मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारे पास कुरान के लिए वक्त नहीं। और ज्यादा बात उन्होंने क्या पूछी कि बस ये बता दें कि बचपन में हमने किसी वो आपा जी से पढ़ा हुआ था एक कुरान, तो अब किस तरह से है, कुछ उसको सही करने का कोई तरीका हो जाए, बस इतना। क्योंकि कुरान इनके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए सिर्फ यही है कि हम इसको अरबी में सही पढ़ना सीख लें, बस। बाज लोगों को सिर्फ यही शौक होता है, उनके लिए कुरान हिदायत की किताब थोड़ा ही है, इसे रहनुमाई थोड़ी लेनी है कि इसको समझें कि क्या कह रहा है, वो तो फिर लितशका हो जाएगा ताकि हमारी जिंदगी मुसीबत में पड़ जाए, इसके लिए होगा, मुसीबत में तुम पढ़ना नहीं चाहते। तो ये इल्म के भी आदाब होते हैं, इल्म के लिए भी सबर चाहिए। सूरह कहफ में हम इल्म के आदाब भी देख चुके हैं, सबर भी चाहिए इसके, हौसला भी चाहिए इसके लिए, मुसलसल चलते रहना चाहिए। पहले दिन ही कोई लोग पूछ रहे आप इसका बता दें उसका बता दें, अभी आप दूसरे तीसरे चौथे पारे पे पहुंचते हो, आपको वहां वहां तक की सारी बातें आप चाहते हैं हमें समझ आ जाए, पता चल जाए, ये नहीं हो सकता। तो इल्म के आदाब है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्मे नाफे की दुआ की, अल्लाह मैंने असल का इल्म नाफियान, अल्लाह मुझे इल्मे नाफे दे। इल्म नाफे कैसे बनता है जब आपके पास अदब भी हो, हम अदब करना नहीं जानते, ना इल्म का अदब है ना इल्म वालों का कोई अदब है, बस आप कहते हैं। और देखिए सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, कभी मुझे इतना अफसोस होता है ना, पास लोगों से पूछे आप क्यों ये कुरान सीखना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, तो वो बस कहते हैं वो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमसे सवाल करते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए ना। मेरे ख्याल आप जो सुनने वाले हैं इनमें से भी काफी लोगों ने ये जवाब दिया होगा, क्या आपको बच्चों के सामने सिर्फ लाजवाब हो जाना ये गरां गुजरता है, इसके लिए आप ये इल्म लेने आए, क्योंकि आपको लगता है उनके सामने हम स्पीचलेस हो जाते हैं, वो तो मैं ऐसे सवाल करते हैं फिर हम क्या कर, नहीं ठीक है आप बच्चों को भी जवाब दे सकते हैं इस इल्म को हासिल करके सारा कुछ, लेकिन ये मकसद है आपका कि हम स्पीचलेस क्यों हो जाते हैं उनके आगे, हमें क्यों नहीं समझ आती है हमने क्या कहना है, तो लिहाजा अब हम सीख लेंगे ना तो फिर हम उनके सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं ना होगी। इस बेइज्जती से बचने के लिए हम जरा कुरान को जरा पढ़ के तो देख ले, तो बच्चे ही फिर आगे से निंदा कर देते हैं ना कि आपको नहीं पता इसका क्या जवाब है, इसका आपको नहीं पता, तो फिर शर्म आती है, तो उससे बचने के लिए वो कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, यानी कभी जिंदगी में ये नहीं ख्याल आया कि मुझे हिदायत चाहिए, अल्लाह तू मुझे राह दिखा, अल्लाह तू मुझे बता कैसे चलना है, मैं तो नहीं जानती, मेरी अक्ल समझ क्या है, उसके लिए कभी नहीं ख्याल आया कि उसके लिए मैं कुरान सीखूं पढ़ूं। फिर जिस मकसद के लिए आप आए हैं बस वही मकसद पूरा होगा ना, और आपने बच्चों को जवाब देने हैं तो फिर आ जाएगा जवाब देना भी, लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी अपनी जिंदगी के लिए, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ जब वो पूछेंगे कि मक्की सूरत का क्या मतलब होता है, ये मक्की है कि मदनी है, ये क्या है, कितने साल में कुरान उतरा, अच्छा मूसा अलैहि सलाम कौन थे, वो प्रॉफिट कौन थे, उनके जवाब आ जाएंगे आपको करना करें, लेकिन हिदायत नहीं आएगी फिर, जिसका मकसद ही हिदायत लेना नहीं तो हिदायत कैसे आएगी। दुख होता है, एक नहीं बेशुमार लोगों से मैंने ये सुना। और क्या करें, बच्चे बच्चे पूछते हैं ना, बच्चे पूछते हैं, बच्चों के सवालों के जवाब हमने देने। यानी बच्चे हो गए, इतने बड़े हो गए, वो सवाल पूछने शुरू हो गए। शुक्र है कि उन्होंने सवाल पूछ लिए, तो तब भी कुछ सोच आ गई कि चलो हम सीख लेते हैं। शायद वो सवाल ना पूछते तो शायद वो भी ना आता, जहन में ही ना आता कभी कि ये कुरान कभी हमने सीखना। तो अपने लिए हिदायत के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो ये कहें कि अपने घुटने टेक दें, अपने बेबसी शो करें कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे। वो हिदायत जिसको मैं दिन रात अपनी नमाजों में मांगती हूँ, अल्लाह तू मुझे दे दे इस कुरान के जरिए, अल्लाह तू मुझे दे दे, मुझे सिखा दे, मुझे बता दे। बहुत कम लोग ये जवाब देते हैं। मैंने तो नहीं कभी सुना आज तक कि कोई ये जवाब दे रहा हूं। लेकिन चले, अगर आप इस नियत से आए थे पहले कि बच्चों को जवाब देना, तो आप कम से कम अपनी नियत बदलें। बच्चों को तो आप दे ही लेंगे जवाब इंशाल्लाह जब पढ़ लेंगे, लेकिन नियत अब ये कर लें कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे, मेरे पास हिदायत नहीं, मैं अंधी हूं इस दुनिया में, मेरे पास आंखें नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सा रास्ता था, ए अल्लाह तू मुझे सिखा, तू मुझे बता दे, तू मुझे उंगली पकड़ के चला दे इस रास्ते पे, और मेरी उंगली ना छोड़ना है अल्लाह जब तक मैं जन्नत तक ना पहुंच जाऊं। अल्लाह तू मेरा सहारा बन जाए, तूने राह भी दिखानी है, तूने चलाना भी है, और तूने ही इस पे जमा के रखना भी है, और तूने ही मंजिल तक पहुंचाना भी है। ये सब कुछ हिदायत में, मेरी मंजिल जन्नत है, तू मुझे वहां तक पहुंचा देना, उससे पहले ना मुझे छोड़ना। तो प्यारी बहनों, आज से ये नियत कर लो, तब देखना कुरान के लिए कैसे सीना खुलेगा, तब देखना कुरान कितना प्यारा लगेगा, तब कुरान बोझ नहीं लगेगा। तो अदब सिखा दिया अल्लाह ताला ने अपने नबी को, तो सहाबा कराम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब सिखाया करते थे। और आप देखें, जिब्राइल अलैहि सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे ना हदीसे जिब्राइल में, ये कैसे आके घुटने से घुटने मिला लिए थे और फिर किस तरह से आपको सिखाया था। तो इल्म के लिए तवज्जो से सुनना, तवज्जो करना, और फिर इल्म के लिए एक अदब से बैठना, फिर सवाल करने का सलीका आना, इल्म की मजलिस में आपने कैसे हाजिर होना वो होना, ये सब जरूरी है, ये सब इल्म के आदाब है। तो ये अदब नहीं होता कि बस जल्दी जल्दी सिखा दे, हमें तो बहुत जल्दी है, और नहीं सिखाएंगे तो फिर ठीक है, फिर इतना लंबा हमसे नहीं टाइम निकाला जाता। तो अल्लाह ताला नबुवत देने वाला है अपने नबी को, लेकिन उससे पहले अदब सिखा रहा है। और ये वादी ये मुकद्दस है, क्यों जूते उतारे, इसलिए कि ये पाक वादी है, मुकद्दस वादी है। जब इसके अंदर एक ये भी बात है कि पता चलता है कि जो मुकद्दस जगह होती हैं उनका एक अदब है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, तो वहां पे उस रिस्पेक्ट को मलहूज़े खाते रखना चाहिए। और गो के आप जूतों के साथ भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपको ये लगता है कि जूतों पे कोई गंदगी ना लगी हो, तो इस वजह से फिर आप जूते उतार दें, वरना वैसे हमें इजाजत है। मगर देखिए, उस जमाने में मस्जिदें कच्ची होती थी, आज अगर जूते पहन के आप कारपेट पे चलना शुरू जाएंगे, तो गंदगी तो सारी वहीं पे साफ करके आएंगे उस कारपेट पे। तो इसलिए जरूरी है कि हम फिर ऐसी जगहों पे जो ऐसी मुकद्दस है, फिर वहां पे जूते उतार देना। आप देखेंगे कि यहूदी खास तौर पे वो जूते उतार के अपनी नमाज पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मुखालफत करो, इसलिए हमें इजाजत दे दी कि हम जूते के साथ भी कर सकते हैं, अगर हमारे जूते पाक हैं तो ठीक है। और फिर दूसरा ये बात है कि आज साइंस भी बताती कि जब आपका कनेक्शन जो है ना जमीन के साथ हो जाता है, लेकिन जूते है ना तो बीच में एक बैरियर है, लेकिन जब आप की अपनी स्किन आपकी जमीन के साथ लगती है, तो उसके भी असरात होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी घास के ऊपर चलने से, वो कहते हैं ये फायदा है ये फायदा है, आप नंगे पैर घास पे चला करें सुबह को, तो क्यों कहते हैं वो। इस तरह ही देखिए, जिस पाक जमीन मुबारक जगह पे वो थे, तुआ जो है उस वादी का नाम है, और तूर के दामन में ये वादी है, वो पूरा इलाका सेना कहलाता है, जैसे कहते हैं ना सहराए सीना जिसको कहते हैं, तो वो उस जगह पे ये वादी थी तुआ की। तो अब इसमें ये इतनी मुबारक जगह है, तो आप अपने जूते उतारेंगे तो जमीन से कनेक्शन जो होगा, इसकी बरकात यानी आपको मिलेगी इस जमीन की। कई जगहों की बरकतें हासिल करने के लिए बंदा जूते उतार के जाता है तो मिलती हैं बरकतें फिर। और कहते हैं आज तो साइंस ने चूंकि ये सारी चीजें भी प्रूव कर दी हैं, आपको पता ही होगा इसकी हिकमतें। कहते हैं कि जापान में बच्चों को ना क्लास में जूते उतरवा के उनको पढ़ाया जाता है।